ऐसे अवांछित बच्चे
नरक आया नारकी जीवन के लिए एवा निश्चय ही कुलकनानाम कुल का वध करने वालों के कुलस्या कुल के श भी पतंती गिर जाते हैं। पितरह पितृगण भी निश्चय ही हेशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की दिया क्रिया कृत्य अनुवाद तात्पर्य दुआएं गए कृष्ण भक्ति वरदान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की अवांछित संतानों की वृद्धि में निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आप इसे दोहराने का प्रयास कीजिए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। इसका साउंड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उत्कृष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है। भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप नृणाम विवृणाम न किं करो नाया मृणीं च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरणम गतो मुकुंद परहित करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है वो देवताओं मुनियों सामान्य जीवों सज्जनों मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। कि भगवान की सेवा करने से ऐसा दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो ये अभी तक मेरे ख्याल से 3600 श्लोक तक हुआ था ध्यान, है ना अंतिम। तो आज जो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा अध्याय समाप्त हो जाए क्योंकि एक ही सब्जेक्ट मैटर है, एक ही विषय पर चर्चा की गई है। किस प्रकार कुल का विनाश हो जाता है युद्ध में मारे जाने पर। तो 37वें और 38वें श्लोक में देखिए अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि जब एक प्रकार से दोष बता रहे हैं युद्ध करने का दोष क्या है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो दोष निकालेंगे ही युद्ध से। युद्ध से कुछ ऐसी हानि होने वाली है जिसे युद्ध ना करना पड़े, ऐसे कुछ ना कुछ तर्क देते हैं। तो वास्तव में ये जो अर्जुन की स्थिति हमारी है, हम जब अपने कर्तव्य से दूर भागना चाहते हैं तो बहुत सारे बहाने करते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा करता है वो क्या बोलता है, मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, मुझे भूख लगी है, मुझे पढ़ाई नहीं करना, आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हम कैसे करते हैं अपने अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे कुछ बहाने करते हैं, ऐसे कुछ तर्क देते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ही महान तर्क है, बहुत ही ऊंचा तर्क है। और भगवद्गीता में भगवान उसका खंडन कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये कोई ब्राह्मणों जैसे महान विद्वानों जैसे बात तो कर रहे हो, तो वास्तव में ये मूर्खता है, तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। तो यहाँ पर दो दो बातें यहाँ बता रही, दो दोष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 33 श्लोक में, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। बताते हैं कि लोभ से अभिभूत चित्त वाले, लोभ से अभिभूत जो लोभ में डूबे हुए व्यक्ति हैं, हाँ, उनकी स्थिति क्या है। जो लोभ में डूबे व्यक्ति ये भी दिखता है मित्र को किस प्रकार से मित्रता का पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति लोभ में आ जाता है तो अपने मित्र का भी नुकसान कर बैठता है। तो मुझे लगता है, अर्जुन से बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक बार मित्रता का नियम तो निभाऊंगा, लेकिन क्या धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसा करेंगे, नहीं, उन्होंने ऐसा किया नहीं। लाक्षाग्रह, द्रौपदी का कीरहरण, है ना, राज्य राज्यशील नहीं के लक्षण है। 33वें श्लोक में पढ़ा हमें किस प्रकार आताताई होते हैं, जो 6 प्रकार के आताताई बताया ना, तो वो कोई मित्रता का लक्षण नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार मित्रता का लक्षण नहीं करने वाले को कोई दोष नहीं आएगा मुझे युद्ध करना, क्योंकि उन्होंने तो मित्रता निभाई नहीं है, तो मेरे तरफ से मैं क्यों मित्रता निभाऊं। और दूसरा बोल रहे हैं कि अपने परिवार वालों को मारने का दोष मुझ पर आएगा, परिवार वालों को मारने का दोष आएगा, कि कम से कम ये दोष तो मुझ पर जरूर आएगा। बोल रहे हैं मित्रता का साथ ना आए, क्योंकि उन्होंने मित्रता नहीं निभाई है, तो मैं उन्होंने मुझ पर हमला करना चाहा तो मैं भी हमला करूँगा, लेकिन मारने के बाद इसका दोष जरूर लगेगा कि अपने कुल का मैंने नाश किया है। इसलिए आगे बोल रहे कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य अद्धि जनार्दन। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पाप कर्म क्यों डूबू, क्योंकि कोई अगर मेरे कुल का नाश करने की बातें कोई बोलता है कि कुल का नाश करने वाला क्या होता है, तो आगे अच्छा आगे के श्लोक में इसका वर्णन होगा। कुल का नाश करने का दोष क्या होता है, अगर कोई बोल रहा है कि चलो फिर भी प्रवृत्त होना पड़ेगा, अगर कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं कुल का नाश हो या कुछ भी हो आप युद्ध करो, हाँ, तब क्या होगा, कुल का नाश होने पर, उनके 39वें श्लोक में बोलते हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, जो परंपरा चल रही है उसका विनाश हो जाता है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म प्रवृत्त हो जाता है। और आगे बोलते हैं जब अधर्म प्रवृत्त जो घर है, कुल कुल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी जैसे सैनिक युद्ध कर रहे हैं, सेना के सैनिक को मार दिया जाए तो क्या होगा, स्त्रियाँ अकेले हो जाएंगी, उनके बच्चे अकेले होंगे, वृद्ध जो होंगे वो अकेले हो जाएंगे, हाँ, तो वो जो बचे हुए लोग होंगे उनकी परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब संतान उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। और क्या होगा, जो शेष लोग जो बचे हुए लोग हैं वो अधर्म का पालन करने लगेंगे, हाँ, और अधर्म का पालन करने से क्या होगा, 40 श्लोक में बताया, हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से वृष्यवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं। भगवान को बोल रहे हैं कि अवांछित संतान उत्पन्न होते, वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं, है ना, वर्ण शंकर जायते वर्ण शंकर। तो ये यहाँ पर लगभग चार इन श्लोकों में लगभग चार दोषों के बारे में बताया गया है, और आज के जो श्लोक है उसमें दो और दोष बताए, यानी कुल मिलाकर 6 दोष बताए। ये 6 दोष वास्तव में कुल के पतन के ऊपर पूरी निर्भर है। वो क्या है मैं आपको सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सब बातें हमें भी लोग बोलेंगे, जब आप भक्ति करते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसी बातें तर्क देते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल दिए, उनको कितना दोष लगा, हाँ, उनको अपने परिवार को मारने का दोष तो लगे ही लगा, भगवान को युद्ध कराना चाहते हैं। ऐसा कभी कभी बोलते हैं लोग कि घर में भगवत गीता रखने से क्या होता है, महाभारत होता है, युद्ध होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, अगर घर में रखोगे नहीं तो युद्ध होगा, घर में भगवद गीता रखोगे नहीं तब युद्ध होगा, रखने से नहीं होता है, नहीं रखने से होता है। इसलिए घर में भगवद गीता रखना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में ज्ञान बताया गया है शरीर क्या आत्मा क्या है। उस ज्ञान को मिलने के बाद तो बिल्कुल लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, तब एक दूसरे को जब आत्मा समझेंगे तो युद्ध होगा बस में, बिल्कुल नहीं होगा। तो छह दोष बताए हैं। पहला है कुल के विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। पहला क्या है? कुल के विनाश से, कुल का विनाश हो गया तो कोई कुल धर्म का पालन नहीं करेगा। हाँ, कुल धर्म का पालन नहीं करने से कुल में क्या होगा, जब धर्म नहीं रहेगा तो वास्तव में अधर्म प्रकट होगा, तो अधर्म की व्याप्ति हो जाएगी चारों ओर, घर में सब अधर्म कारण होंगे। धर्म कार्य कैसे हैं, जैसे घर में पूजा पाठ करना, बच्चों का ध्यान रखना, स्त्रियों की रक्षा करना, गौओं की रक्षा करना आदि आदि जो धर्म है वो पालन होना बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या बोलते हैं, अधर्म फैल जाएगा। तीसरा, अधर्म फैलने से क्या होगा, स्त्रियाँ दूषित होगी। स्त्रियाँ दूषित किसी होंगी कि स्त्रियाँ अपने नियमों का पालन नहीं कर पाएंगी, उनकी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो घर में घर से बाहर निकलेंगी, उनकी रक्षा नहीं होगी तो वो दूषित कहलाएंगे। हाँ, और जब स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं तो अवांछित संतान उत्पन्न करती हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता है। तो ऐसी स्त्रियाँ जिनका कोई सहारा नहीं होता, कुछ ना कुछ किसी न किसी पुरुष के पास सहारा के लिए जाती हैं। हाँ, सहारे के लिए जाती हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या होगी, अवांछित संतान होगी, वर्ण संकर होंगे। और आगे आज के श्लोक में बताया गया कि अवांछित संतानों से कुल घातियों तथा नारकी जीवन उत्पन्न होगा। जो संतान उत्पन्न होगी कैसी होंगी, कुल का घात करने वाली, कुल को मारने वाली होंगी, है ना। आजकल ऐसा देखते हैं हम लोग कि जो भी आजकल से जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी होते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही इधर से, बच्चे शांत नहीं होते। लेकिन आप अपने हमारे ज़माने में देखिए, अगर बचपन की बात देखेंगे तो बच्चे थोड़ा बहुत उपद्रवी तो होते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, बदमाशी करते हैं, पर इतना नहीं करते जैसे आज के लोग हैं, क्योंकि आज के लोग हर चीज़ में हाईटेक हैं, है ना। उनकी बदमाशी भी कहती है हाईटेक है, हाईटेक बदमाशी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अवांछित संतानों से कुल घातियों तथा नारकी जीवन होगा। और नारकी जीवन होगा तो छठवां दोष क्या है, ऐसी संतानें पितरों को पिंडदान नहीं करेंगी, है ना। धीरे धीरे श्राद्ध की परंपरा जो है समाप्त हो रही है। कितने लोग हैं जो गुड़गांव दिल्ली, दिल्ली NCR में कोई यहाँ पे श्राद्ध कर करते हैं, साथ बहुत ही कम लोग करते होंगे, है ना। आने वाली जो पीढ़ी होगी इसको बोलेंगे कि हमारे जमाने में श्राद्ध होता था, अच्छा श्राद्ध होता था, आप लोग कितना अंधविश्वास की, कैसे लोग बोलेंगे। ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आज हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई मॉडर्न स्टाइल में लाइफ जी रहे हैं उनसे पूछें कि अभी श्राद्ध का महीना आ रहा है, श्राद्ध करना चाहिए अपने माता पिता का, तो लोग यही बोलेंगे कि यार दकियन उसकी बातें कर रहे, पुरानी बातें कर रहे, किए क्या है। तो इस प्रकार से साबित हो जाता है कि ऐसा परिवार, ऐसा समस्या, ऐसे लोग जो कि भक्ति में नहीं लगे हुए हैं और ये सब श्राद्ध आदि नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भी वर्ण शंकर के समान ही है। यहाँ बताया जा रहा है वर्ण शंकर क्या होंगे, पितरों की पिंड क्रिया, जल क्रिया समाप्त कर देंगे और पूरा परिवार का पतन हो जाएगा। तो पर ये छह प्रकार के जो दोष हैं ये मेरे कारण होंगे, मैं युद्ध करूँगा क्योंकि मैं युद्ध करने में बहुत ज़्यादा कुशल हूँ, कितने लोगों को मार दूंगा मैं, उन सब परिवार का जो अंतिम स्थिति होगी वैसी होगी जैसा मैंने बताया कि सबका पतन हो जाएगा, उसका दोषी तो मैं हूँगा। ऐसे दोष को लेके, ऐसे पाप को लेके क्या मैं जीवित रहना चाहता हूँ, नहीं, मैं ऐसे युद्ध नहीं करूँगा। तो आगे हमारे कई टीकाकार बताते हैं किस प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, उसको लेकर बताते हैं कि जब किसी घर में नारकी जीवन बन जाता है, नारकी जीवन मतलब यहाँ बताया ना शब्द भी हो गया, संकरों नरका एवं, संकरों मतलब अवांछित संतान है वो नरक के जैसा जीवन का ऐसा एटमोसफेयर बना देते हैं घर का वातावरण, तो वो क्या कैसे बनाते हैं, दो प्रकार के। एक घर में युद्ध करते समय तीन प्रकार के लोग रहते हैं जब ये स्थिति आती युद्ध की, एक तो जो युद्ध कर रहा है युद्ध स्थल पर सैनिक, और दूसरा जो कि जन्म लेने वाला संतान है उसको स्थिति नहीं पता क्या है, वर्ण संकर जो लेने वाला है उसकी स्थिति होगी, तीसरी जो होगी जो बचे हुए लोग हैं। तो वर्ण संकर जो होगा वो क्या होगा, अपने ही परिवार का नाश करेगा, तो नाश करने से क्या होगा, कुछ लोग बचेंगे कुछ लोग मर जाएंगे। तो बता रही है उन दोनों की चिंता मुझे ज़्यादा है, कौन दोनों की, जो कि मारे जाएंगे और जो बच जाएंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, या जो लोग सैनिक मरेंगे इस युद्ध में उनकी चिंता भी नहीं है। उनकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हैं। उनका दर्शन करके कोई अगर शरीर त्यागता है तो गोलोक वृंदावन के वैकुंठ के एटलीस्ट वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को पता है, पिछले 45वें श्लोक में बोलेंगे इस बात को कि मुझे इसका भय नहीं है, मैं अगर निहत्था भी रहूं और मेरे ऊपर हमला भी करें, जो दुर्योधन के जितने आसपास के लोग हैं मुझ पर हमला करें, मेरी मृत्यु भी हो जाए, मुझे इसका भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इससे उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। पर मुझे चिंता तो उन लोगों की है जो घर पर हैं, उनका क्या होगा? स्त्रियाँ जो होगी दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न करेंगे, वर्ण संकर होंगे, और क्या होगा, पूरा समाज मेरी वजह से डूब जाएगा। तो मैं अपने मरने पर अपने अपयश के लिए मैं दूसरे को क्यों दोषी ठहराऊं, दूसरे को क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए बुरे में युद्ध नहीं करूंगा। तो बताते हैं कि यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया नारकीय, जो देख रहे हैं नारकेव शब्द प्रयोग किया गया, उसे बताया नारकेव शब्द को संधि विक्षेप करें तो नारके का मतलब होता है नारकी जीवन, इव का मतलब होता है समान। ऐसा नहीं कि मरने के बाद वो नरक जाएंगे, यहाँ सब बताया नहीं जा रहा, यहाँ बता रहे इसी जीवन काल में उनका जीवन कैसा हो जाएगा, नरक के समान। नरक का जीवन बहुत आनंदमय होता है कि नहीं, कैसा होता है? किसने किसने नरक देखा है, देखा है? हाँ हाँ, निकल तो पूरे नरक ही है। तो नरक में भयंकर यातनाएं होती हैं। नरक के बारे में अगर आप गरुड़ पुराण से पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आया किस प्रकार नरक में जो यातनाएं होती हैं, अगर हम सुन भी लें, हालांकि भक्त तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर किसी अभक्त को सुना दिया जाए तो वो तुरंत जपना शुरू कर देगा, माला करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, जब शरीर को व्यक्ति त्यागता है तो त्यागते समय वहाँ पर आते हैं तीन या चार, वो आते हैं कौन, यमदूत आते हैं यम पास लेकर, और गले को बांधते हैं और जोर से खींचते हैं, इतना जोर से खींचते हैं आपके सिवाय किसी को नहीं दिखते हैं वो, और आंखें बाहर आ जाएगी, मल मूत्र त्याग देता व्यक्ति अपने बिस्तर पर, और उसके अंदर से आवाज़ भी निकलती है, गले भी पकड़ते हैं ना सीधा, आवाज़ भी निकलती है, वो चिल्लाता भी है तो कोई सुनने वाला नहीं है, उनको लगता है कि बस कष्ट हो रहा है, जोर से हाथ भी उठा सकता, बोल नहीं सकता, प्रयास के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकता, यमदूत आते हैं तो ऐसा करते हैं। तो जैसे कि अजामिल की कथा आपने कभी सुनी होगी, उससे वजह अजामिल को बांधा गया यम पास है, मारा जा रहा था, तब उस समय वो उस उनके अंदर जो वर्ण जस्ट पहले थोड़ा देर शरीर त्यागने जस्ट त्यागना रहता है, एकदम अंतिम समय आ जाता है, उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण पुकारा, और उस कारण से ही क्या हो गया, उनको मुक्ति प्रदान हुई। नारायण जैसे पुकारा तो चार वहाँ से विष्णुदूत पहुँच गए, बोले लगता है कोई हमारे स्वामी जी का नाम पुकार रहा है कोई व्यक्ति, चलो उसकी मदद के लिए, वो मुसीबत में है। तो चारों पहुँच गए और वहाँ पहुँच गए उनकी रक्षा की। तो हमारे जो श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं उन्होंने शब्द का उच्चारण किया था नारायण भगवान का, इसलिए नरक की यात्राएँ नहीं मिली उनको। लेकिन सामान्य व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो उसको नरक जाना पड़ता है, और जब शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाता है, आत्मा को यातना शरीर प्रदान की जाती है। कौन सी शरीर प्रदान की जाती है? यातना, जिसमें यातना देंगे, खूब मारेंगे, शरीर को कुछ नहीं होगा, पक्का सुख नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके शरीर पर तलवार चलाई है, तलवार कटते हैं शरीर कटेगा, फिर से शरीर वैसी हो जाएगा, लेकिन कष्ट कटने से जितना होगा उतना कष्ट जरूर होगा, उतना दुख उतना कष्ट होगा ही होगा। और चाबुक से लोहे से गर्म, लोहे का गर्म चाबुक होता है, उसे मार मार कर ले जाते हैं, और ऐसे रास्ते में ले जाते हैं, एक रेत का रास्ता होता है, और रेत का जो बालू का जो टेम्परेचर होता है ना 10,000 सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है 10,000 सेंटीग्रेड होता है, उससे बोलते चलो, और चारों तरफ वन होते हैं, दावानल होता है, वो अग्नि से प्रज्वलित रहता है, पूरी अग्नि इसके अंदर आर्य से भवक रहा हो, और आप रुकोगे तो हंटर पीछे से पड़ता है, लड़ा चलो, मारते मारते ले आते हैं। फिर वहाँ पर एक नदी आती है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी में उसको तैरना होता है, डूबना होता है, और वैतरणी नदी किससे मिलकर बनी होती है, मल मूत्र है ना, मवाद कफ आदि चीज़ों से मिलकर बना होता है। जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं सारी चीज़ हड्डियाँ उड्डियाँ मांस वांस के अंदर होते हैं, उसको डुबा डुबा के मारते हैं उसके अंदर, उसके अंदर जाता है, कभी कोई बचने के लिए सांस लेने के लिए पी भी लेता है, इतना मारते हैं उसको। और वेटरिनरी भी बहुत चौड़ी है, तैरते 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 कुछ दूर तक जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण बताया गया है कि जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो 13 दिन जो संस्कार होते हैं उस संस्कारों में उसको नरक की तरफ नरक तक पहुंचने में कई सुविधाएं प्राप्त होती है जब संस्कार को किया जाता है घरों में। जैसे कि बताते हैं कुछ 9वें दिन या 8वें दिन सब छाता दान करते हैं ब्राह्मणों को, कुछ अलग अलग विधियाँ, तो छाता दान करने से उस व्यक्ति को वहाँ पर नाव मिलेगी वैतरणी नदी में, तो तैर कर जाना नहीं होगा, नाव में बैठ कर आराम से जाएगा। इसलिए पिंड क्रिया भी जो जलदान क्रिया भी जरूरी है शास्त्र के अनुसार। पर यहाँ बताया गया है नरक की यात्रा दूर यमदूतों का भी दर्शन नहीं होगा, क्यों? जब एक बार हम मंत्र जपेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो कुछ नहीं होगा, बहुत दूर की बात है नरक की यात्रा, दर्शन ही नहीं होगा। अजामिल तो पूरे जीवन भर पाप किया, एक बार उन्होंने नाम लिया नारायण, 4 अक्षरों का नारायण, और 4 विष्णुदूत आए थे और हम लोग पता नहीं कितने दिन से जप रहे हैं, पता नहीं कितने विष्णुदूत आएंगे हमें ले जाने के लिए, है ना। और जो भगवान का नाम जपता है तुलसी माला कंठ में धारण करता है, बताया था 4 मील तक कोई भी यमदूत भटकता नहीं है, 4 मील तक दिखेगा भी नहीं, दर्शन भी नहीं होगा। ऐसा महात्मा बताया जाता है, तुलसी महात्मा बताया गया है कि एक बार एक कथा भी आती है अपने साथ, कल्याण की बुक आती है, अपने पढ़ा कभी कल्याण बुक, उसमें एक कथा आती है, 2 मित्र रहते हैं, एक मुसलमान और एक उसका पंडित रहता है पुजारी, वही भगवान का भक्त रहता है, दोनों बहुत अच्छे मित्र रहते हैं। पर एक दिन अचानक से ब्राह्मण की मित्र मृत्यु हो जाती है, पंडित जी की मृत्यु हो जाती है, तो वो दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि शौच क्रिया भी साथ में जाते थे सुबह। तो जब मृत्यु हो जाती है उसको जब अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, तो दूसरे दिन सुबह जब वो मुसलमान शौच क्रिया के लिए जाता है तो उसे याद आती है कि मेरा मित्र था, मैं उसके साथ जाता था, कितना अच्छा लगता था, उसे वो याद करता रहता है। तो सामने में वो मित्र मिल जाता है, मतलब तुम तो कल मर गए, मैंने तुम्हारा पिंड दान किया था, तुम्हारा सब कुछ किया था अंतिम संस्कार के, लेकिन तुम जीवित हो। बोले मैं जीवित नहीं हूँ, मैं क्योंकि अच्छा कार्य किया था तो मुझे सेवा मिली है यमदूत बनने की, मैं यमदूत बन चुका हूँ और आज मैं किसी को लेने आया हूँ, आपको लूँ नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर किसी को भेजा गया है, मुझे भेजा गया किसी को लेने के लिए, एक बच्चे की मृत्यु होने वाली है, यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ पर एक बच्चा भरने वाला है, उसको एक बैल आकर मारेगा और वो बच्चा बहुत ऊँचे से जाकर गिर जाएगा, नीचे गिरेगा, उसकी मृत्यु होगी, उसके आत्मा को मैं ले जाऊँगा तो वहाँ पर कष्ट दूंगा, क्योंकि उसने कई पाप पिछले जन्म में भी बच्चे उसके तो कष्ट देना है। तो बोलते हैं कि मैं तो इस पर विश्वास नहीं मानता, लेकिन तुम वापस आए हो तो थोड़ा कुछ सच हो सकता है, ठीक है कल ये बात हम आज देखते हैं शाम को। तो शाम को जब जाते हैं तो ठीक वैसी घटना घटती है, उस बच्चे को आकर बैल मारता है, बैल को मारने से उस बच्चा ऊँचा ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सोचता है कि मेरे मित्र ने सही कहा था, उसको विश्वास होने लगता है, यमदूत होते हैं, यमराज हैं, नरक यात्रा हैं, सब विश्वास करने लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर वो जब शौच क्रिया ले जाते हैं फिर से उसका मित्र मिल जाता है, तो बोलते हैं कि लेकिन तुम मैंने तो आपने कहा था कि आपका कार्य पूरा हो गया, आप जाने वाले थे, मैंने देखा भी आपने जैसे बताया वैसा हुआ, पर आप गए नहीं। बोलते मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, मेरा काम पूरा नहीं हो पाया। बोलते मैंने देखा है मृत्यु होते बच्चे को, शरीर त्याग दिया फिर भी उसकी आत्मा को ले नहीं पाया। बोलते नहीं, और जैसे ही बच्चा ऊपर गया नीचे गिरा, तो नीचे गिरते समय वो तुलसी का पौधा था वहाँ पर, तुलसी का पौधा जब सूखा रहता है वहाँ पर गिरा, तो शरीर उससे स्पर्श था, स्पर्श करते उन्होंने शरीर त्यागा, तो मैं उसे छू भी नहीं पाया, छूने की शक्ति नहीं थी मुझे, मैं छूता तो भस्म हो जाता, इसलिए मैं चला गया, वो उसको विष्णुदूत लेकर चले गए। अरे वाह, तो ये महिमा है तुलसी कंठ में धारण करने की, लेकिन उसके लिए नियम है, 4 दिन वहाँ कठोरता से पालन करना पड़ेगा और तब धारण कीजिए। और देखिए यमदूत क्या, यमदूत सपनों में भी नहीं आएंगे, सामने दिखना बहुत दूर की बात है। 4 नियम सबको पता है, 4 नियम के बारे में बताते हैं, मांसाहार नहीं करना पहला नियम, अंडा मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है। फिर है नशापान नहीं करना। नशापान में क्या होता है, आप सब जानते हैं नशापान में शराब पीना है ना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना कि इसमें कैफीन होता है, वो है ना, तो ये नहीं खाना, चॉकलेट भी नहीं खाना। और चौथा क्या, तीसरा क्या है, गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना, शेयर मार्केट में बैठ के स्पेकुलेशन नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना। यहाँ तो खैर मुंबई में जैसे मटका भी खेलते हैं वो यहाँ तो नहीं होता है, तो लॉटरी वोटरी की टिकट नहीं खरीदना, सब नहीं करना चाहिए। अंतिम है अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखना, ये नहीं रखना चाहिए, न स्त्री से न पुरुष से दोनों से संबंध नहीं रखना चाहिए। अवैध वैवाहिक जीवन ही बिताने, वैवाहिक जीवन में ही संबंध रख सकते हैं। ये चार नियम का पालन करते हैं तभी जाकर आप कंठी माला धारण कर सकते हैं। फिर देखिए आपको तो फिर यमदूत सपने में नहीं दिखेंगे, हाँ, और उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र जब भी विश्वदूत आएंगे आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पर चर्चा कुछ और विषय की है, यहाँ बोल रहे हैं कि वर्ण संकर का, वर्ण संकर करते क्या है, किस प्रकार आपका जीवन नरक बना सकते हैं, इसका वर्णन बहुत सुंदर होता है। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की, इसका वर्णन आता है पुराणों में, इसका वर्णन आता है बहुत सुंदर, पद्म पुराण, पद्म पुराण में, पद्म पुराण में कई कई महात्म बताए गए हैं, भागवत महात्म बताया गया है और गीता महात्म बताया गया है, तो उसमें भागवत श्रीमद् भागवतम की जो महिमा के बारे में वर्णन हुआ है, तो एक बहुत सुंदर कथा आती है, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर रंगपत नामक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। हाँ, तुंगभद्रा नदी के निकट में एक नगर था, उसके जो वहाँ पर एक निवासी रहते थे उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत ही सदाचारी विद्वान थे, जैसे भक्त होते हैं भगवान के, उनका लेकिन कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, क्या नाम था, धुंधली। धुंधली मतलब क्या होता है, जैसे धुंधला दिखता ना वैसी, उनका जीवन भी वैसी था धुंधला, कैसा था, बुद्धि वैसी थी, झूठ बोलती थी, बहुत ही कर्कश आवाज था, बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलती थी। आप लोग तो बहुत टीवी देखे होंगे, साथ भी कई बहुत थी, घर घर की कहानियाँ, तो आप लोग कैरेक्टर समझ सकते हो कैसी थी। तो उन्होंने, उनके पुत्र नहीं था, वो दिन रात विलाप करते थे पुत्र की प्राप्ति के लिए, भिक्षुकों को खाना खिलाना, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, कितने नियम किए, कितने पुण्य किए, पर कोई संतान उत्पन्न नहीं हुए, बहुत दुखी हो गए। तो इस प्रकार आत्मदेव दुखी होकर जंगल चले जाते हैं, बोलते मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अगर मेरा पुत्र नहीं है मेरे जीवन में क्या लाभ, वो पुत्र जो है अग्नि मुखाग्नि नहीं देगा, पिंडदान नहीं खिलेगा, तो मैंने उसकी यात्रा नहीं, इससे अच्छा मैं जंगल चला जाता हूँ, वानप्रस्थ ले लेता हूँ। इस प्रकार का सोचकर वो जंगल चला जाता है। जंगल जाता है तो वहाँ पर एक सन्यासी मिलते हैं उसको, एक महान भक्त मिलते हैं, और उनसे पूछते हैं तुम तो इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो। तो वो अपना दुख का कारण बताते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरी ये स्थिति है कि मैं गाय पालता हूँ तो गाय बछड़ा देना बंद कर देती है, अगर वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष में फल नहीं आता है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे घर में जो भी वस्तुओं को मैं रखता हूँ उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। तो वो बताते हैं देखिए आपको मैं जो दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ आपके जीवन में कोई संतान है ही नहीं, आप मेरे से प्रयास कर रहे हैं, मेरा बात, मेरी बात मानिए, आप इसको ना जाइए, संन्यास ले लीजिए, यानी संन्यास ले लीजिए, इस संसार को त्याग दीजिए, क्योंकि कष्ट ही कष्ट आपके जीवन में, अगर संसार को त्याग देते हैं, संन्यास धारण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो शायद इसी जन्म में भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। पर उनके पुत्र को प्राप्ति का जो मोह था वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, आप सब जानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे और दुखी होकर बोलने लगे मैं यही प्राण त्याग दूंगा आपके समक्ष, आपने अगर वरदान नहीं दिया तो। बोले कमाल है यार, वो घूमने आए थे वृंदा जंगल में, मिले सामने और बुरे मेरे सामने त्याग दोगे, फंसा दिया मुझे, है ना, पुलिस तो मुझे पकड़ेगी, ऐसे होता है ना, तो ये तो गलत बात है। बोलते नहीं ये आपके कारण होंगे, क्योंकि आप वरदान देने में पूरी तरह समर्थ हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं शरीर त्यागूंगा और दोषी आप होंगे। तो बोलते ठीक है, बलपूर्वक तुम पुत्र की प्राप्ति कर रहे हो, तो जिस प्रकार चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त हुआ था बलपूर्वक, उसको दुख झेलना पड़ा था, तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। बोलते चलेगा, पुत्र तो मिलेगा कम से कम, ठीक है। तो बोलते ठीक है, एक फल देते हैं, बोलते ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब वो पुत्र रत्न होगा कि पुत्र पत्थर होगा पता नहीं, लेकिन लेके चले जाओ। लेके जाते हैं उनकी पत्नी, क्या नाम था, धुंधली, काम भी ऐसे था उसका नाम जैसा था। तो जैसे उनको देते हैं बोलते हैं कि ये फल तो क्या होगा स्वामी जी, बोले ये फल खाओगे तो पुत्र होगा, पुत्र होगा, खुश होती सामने में। बाद में बोलती है अगर फल खाऊंगी पुत्र होगा मेरे गर्भ में, 9 महीने में कष्ट झेलूंगी, फिर उसको खिलाना पिलाना सेवा करना पड़ेगा, ये नहीं करूंगी, इससे तो अच्छा मर जाना। तो बोलती है मैं बोल दूंगी कि मैं खाली हूँ, मैं किसी और को खिला देती हूँ। वो किसी घर में गाय रहती है जो संतान नहीं देती थी, तो उस गाय को खिला देती हूँ। और खुद बोलती हैं कि अपने बहनोई के यहाँ से, अपने बहनोई और बहन के यहाँ से एक पुत्र को उठा देना, जात शिशु रहता उसको ले आती हैं। और अपने पति को बोलती है कि मैंने खा लिया था और ये संतान उत्पन्न हुआ है, और उनके जो हमारे बहन बहनोई थे तो उनके तो बच्चे की मृत्यु हो गई, जन्म लेते ही मर गया। और इस प्रकार यहाँ पर वो जो बच्चों को गोद लेती है और वहाँ पर गाय एक बच्चे को जन्म देती है, कोई मनुष्य का बच्चा, क्योंकि फल तो मनुष्य के बच्चे होना था, चाहे गाय खाए चाहे गधा खाए चाहे मनुष्य खाए, तो वहाँ से बच्चे का जन्म हुआ। तो उसका जो कान था वो गाय के समान था, लंबा था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण बहुत सुंदर कथा है, ये आपने कभी सुना होगा लेकिन यहाँ से नहीं सुना होगा, जो शुरू से बताया जा रहा है। तो गोकर्ण नाम का जो बालक था बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही यशस्वी था, बहुत ही अच्छा था वो। उसमें जैसे गाय के अंदर सौम्यता है, गाय को दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, वैसे उसके अंदर गुण थे, क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म लिया है और सन्यासी की कृपा है। पर ये जो बच्चे को लेकर आए थे, इसका नाम इतना ज़्यादा दुष्ट था, वो बच्चा इतना ज़्यादा दुष्ट निकला, वो माता के नाम के समान ही उसका नाम था। उसका नाम था धुंधकारी, क्या नाम था, वो पूरे वातावरण में धुंध मचा रखा था। किसी भी घर में जाता कोई बच्चा रो रहा, उसको उठाता कुएं में फेंक देता, हरी बोल, ऐसी था उसका काम। और इतना खतरनाक था कि सबसे द्वेष करता, कभी किसी घर में कोई नहीं है तो आग लगा देता और चोरी करता, और क्या करता, छोटे बच्चे को पास बुलाता खिलाने के लिए और बोलता तुम्हें भूख लगी है, तो बोलता बच्चा हाँ मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, मिठाई में जहर मिला के दे देता। भयंकर विनाशकारी था धुंधकारी। धुंधकारी के नाम से भयभीत हो जाते, जैसे हम लोग को भय लग रहा है, सोचो 7 साल के बच्चा हो तो क्या करेंगे। तो उसके साथ जो बच्चे खेलते थे, खेल खेल में अगर थोड़ा बहुत कुछ लड़ाई हो गई वही साफ कर देते थे, ऐसा खतरनाक था वो। तो वो बहुत दुखी हो गए घर वाले। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, वैश्यावृत्ति करने लगा, कई वैश्यों के पास जाता था। इस प्रकार उसके जो पिता थे बहुत दुखी हुए, और दुखी उन्होंने क्या किया, शरीर त्याग दिया, आत्महत्या कर ली। बोलते मैंने काश उस सन्यासी की बात मानी होती, इस कौन चला गया होता, कितना अच्छा था, लेकिन आज मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही, तो सुसाइड करता है। उनकी जो माता थी वो देखिए, उनका बेटा तो उसका 10 गुना आ गया है, तो भी उसको बहुत दुख हुआ, तो उसने भी शरीर त्याग दिया। और जब देखा इस प्रकार गोकर्ण जो थे, क्योंकि उनके भाई के समान थे, क्योंकि वो उनके घर में जन्म लिया तो उसी समय जन्म लिया था, वो बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और पंडित थे। तो वो जब उन्होंने देखा कि जो धुंधकारी है मेरा भाई के समान तो है, लेकिन ये लगा हुआ इन सब कार्यों में, वैश्यावृत्ति में लगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको त्याग कर वहाँ से चले गए। और कुछ उस जैसे वो त्याग कर चले गए, तो धुंधकारी ने क्या किया, कई वैश्याओं को घर रखने लगा, 5-6 वैश्याओं को घर रखा। तो वैश्याओं ने क्या किया, एक दिन उनको जहर मिला के दे दिया खाने में, और इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और शरीर से घर से सारा सामान चोरी करके उठाकर लेकर भाग गई सारी वैश्या। लेकिन धुंधकारी क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी उसी घर में। जब गोकर्ण वापस लौटे तो उन्होंने देखा यहाँ पर उनकी भाई की मृत्यु होगी, प्रेत योनि में प्राप्त हुआ है, तो पिंड दान करने के लिए गया। गए पिंड दान करके आए, देखे अभी भी वैसी प्रेत योनि में है। तो उनको बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बदमाश था, इतना ज़्यादा उपद्रवी था कि तुम 100 जन्मों तक पिंड दान भी करोगे तो मुझे इस योनि से मुक्त नहीं होंगे, मेरे लिए कुछ और करो। तब गोकर्ण ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक महात्मा को बुलाए और श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, पाठ करवाया 7 दिन 7 रात लगातार। तो सात दिन सात रात लगातार सुनने के बाद जो दुंधकारी है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अरे वाह, क्यों हुई? बाकी वहां पर जितने थे इवन गोकर्ण भी नहीं गया, पता क्यों? क्योंकि गोकर्ण को भूख प्यास तो लगती थी, प्रेतियों ने भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, तो रात भर भी वो सुनता था, तो उसे फायदा हो गया प्रेत योनि का, है ना? क्यों हो गया? क्योंकि वो सन्यासी की कृपा थी उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति को कष्ट तो मिलने वाला था पर उन्होंने वरदान दिया था, इस वजह से उनके संतान पर कुछ न कुछ कृपा प्राप्त होगी। और गोकर्ण के कारण उसको प्रेत योनि को होने के बावजूद भी वो वैकुंठ के धाम प्राप्त किया। तो उसमें हमने देखा किस प्रकार के संतानें अवांछित होंगी, है ना? अगर वो प्रॉपरली उनका जन्म नहीं होगा या फिर वो संतानें अच्छी संस्कार वाली नहीं होगी तो उसका क्या होगा? कुल का नाश कर, नरक पूरा जीवन बन जाएगा। तो ऐसे कई घटनाएं आती हैं, तो हमारे पास समय कम है। एक और उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में, ध्रुव महाराज के वंश के राजा के अंग राजा हुए थे, उनका भी कोई पुत्र नहीं था, देवतागण बुलाने पर कोई नहीं आते थे, यज्ञ नहीं होता था। एक बार बड़ी मुश्किल से किसी विशेष यज्ञ थे, उनकी पत्नी जो सुनीधा ने एक वेन नाम के पुत्र को जन्म दिया, अपने भागवतम में उसका अध्ययन किया होगा। और क्योंकि जो सुनीता थी वो मृत्यु की पुत्री थी, मृत्यु एक पर्सन व्यक्ति है, उसकी पुत्री थी, इसलिए उसका पूरा नाना का प्रभाव उनके किस पर पड़ा? पोते पर पड़ा, क्या बोलते हैं उसको, नाती पर पड़ा। तो वो भी दुष्ट हुआ, बड़ा धर्मी, जंगल वंगल घूमता, पशुओं को मारता। इस प्रकार वो सब लोग बोलने लगे कि ये बहुत ही क्रूर वेन नाम का बालक है, और इस प्रकार वो सारे उसके घर वाले दुखी रहने लगे। तो भागवत में उसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार वेन के जन्म लेने से उनका पूरा परिवार जो दुखी हो गया, वो जो राजा थे अंग राजा जो थे वो भी दुखी हो गए, उनके आसपास जो भाई थे, उनके चाचा जो अलग राज्य था, वो सब दुखी हो गया राजा वेन के वजह से, और पूरा साम्राज्य जो था वो उथल पुथल हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब जब अवांछित संतानें होती हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमें भक्ति करने में भी, किसी और कार्य करने में भी तकलीफ होती है, और पूरा जो जीवन है, जो हमारा परिवार है, वो कैसा हो जाता है? नारकी हो जाता है। और आगे बता रहे हैं कि इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे, देखिए ध्यान से, इसमें बोल रहे हैं कि जो पिंडदान किया जाता है, कई ऐसे लोग सोचते हैं पिंडदान तो एक संस्कार ऐसा है जिसमें कोई बहुत विशेष कारण नहीं होता है, भक्त लोगों को नहीं करना चाहिए। बात सही है, भक्त लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप भगवान की भक्ति प्रॉपरली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। जो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पिंडदान में होता क्या है, कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कोई भी तपस्या, उसका स्रोत कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। विष्णु के बिना यह संपन्न नहीं हो सकता। तो पिंडदान में किया जाता है, भगवान विष्णु को प्रसाद ग्रहण भोग लगाया जाता है, जैसे हम ऑफर करते हैं ना जगन्नाथ जी को, ऐसे भोग लगाया जाता है, और उस भोग को जब प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पिंड जो अपने पितर हैं उनको बांटा जाता है, पितर लोक है। आप जाएंगे पाताल लोक के नीचे भी एक पितर लोक है, जहाँ पर जो हमारे पूर्वज जो कि अच्छे काम नहीं किए थे, सबके नहीं, कई लोगों के अच्छे काम भी किए होंगे, तो जिनके अच्छे काम नहीं किए थे, जिनके संस्कार अच्छे नहीं थे, कर्म अच्छे नहीं थे, वो उस लोक में निवास करते हैं। और यहाँ पर पिंडदान करने से, यहाँ प्रसाद उनके नाम पर खिलाने से, ब्राह्मणों को भोज खिलाने से क्या होता है, उनको वहाँ पर जाकर मुक्ति प्राप्त होती है, उस लोक से मुक्ति प्राप्त करके वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेकर भक्ति द्वारा प्रारंभ करते हैं। तो ये एक मौका है भगवान का प्रसाद वितरण करने के लिए। तो ऐसा कहते हैं चरितामृत में वर्णन आता है, जब अद्वैत आचार्य अपने माता पिता का जब संस्कार कर रहे थे श्राद्ध का, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाने के बजाय बुलाया था किनको, हरिदास ठाकुर को बुलाया था। और हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे, बोले मैं तो एक यावन संप्रदाय, यावन फैमिली में जन्म हुआ मेरा, तो मैं आपके घर में नहीं आ सकता, मुझे हाथ में भोजन दे दीजिए, अगर आप कुछ देते हैं प्रसाद है क्योंकि भगवान का, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य जानते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन है, हरिदास ठाकुर कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी, तो जानते हैं ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते ना, तो वो उनको हाथ पकड़ के अंदर खींच लाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, बोलते हैं आप जैसा वैष्णव एक बार अगर भोजन करता है तो हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने योग्य है, वो भी शुद्ध ब्राह्मण। इसलिए वैष्णव को भोजन कराना, बताया जाता शास्त्रों में कि जो भगवान भोग ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मणों के मुख से ग्रहण करते हैं, और जो शास्त्रों का वर्णन होता है वो ब्राह्मणों के मुख से होता है। इसलिए पिंड दान करते हैं, जो श्राद्ध मनाया जाता है उस समय में क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोज खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार बताते, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो इस प्रकार के नियम करने की उसको अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि वो उनके परिवार में जितने लोग हैं वो सब क्या जाएंगे, गोलोक की प्राप्ति हो सकती होगी। जैसा कि वर्णन आता है नरसिंह लीला में आता है, नरसिंह लीला में क्या होते हैं, जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, जैसे भी हैं मेरे पिता हिरण्यकश्यप, जैसे भी हैं राक्षस हैं लेकिन फिर भी वो मेरे पिता हैं, आपने उनको मृत्युदंड दिया है लेकिन फिर भी उसको मुक्ति प्रदान कीजिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, नरसिंह भगवान उनके प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि अलग से कृपा करने की जरूरत है। जिस परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है ऊपर नीचे सब मिलाकर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, तात्पर्य लिखते हैं कि नरसिंह भगवान 21 पीढ़ी क्यों बोल रहे हैं, ये तो 100 जनरेशन होना चाहिए, अरे वाह, मतलब 100 पीढ़ियां होना चाहिए, सिर्फ 21 पीढ़ियां नहीं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और ये बात सच है, सच होनी भी चाहिए, कि इसलिए प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त बोलेंगे तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए मात्र किसी परिवार में भक्त बन जाए तो उसका परिवार पूरा का परिवार तर जाता है, जबकि कैसा भी कार्य कर रहा हो, कैसा भी कर्म कर रहा हो। और यहाँ उल्टी चीज बताई गई है कि अगर वर्ण संकर होगा तो पूरे परिवार अच्छा भी हो तो नरक यातनाएं झेलता है। इसलिए हम सब लोग जितने भी यहाँ गृहस्थ भक्त हैं इनको सब सोचना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमार आश्रित प्राज्ञ, 5 वर्ष की आयु में ही हम बच्चों का क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, बुद्धि देना चाहिए, उनको भगवान के संबंधित बनाना चाहिए, उनको कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में जो ज्ञान और जो बुद्धि जो आप शिक्षा देते हैं वही जीवन भर पालन करता है। हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग याद कीजिए, हम लोग सब बचपन में हमारे माँ बाप ने कुछ न कुछ संस्कार दिए थे तभी जाकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। सच बात है, ऐसी बात, अदरवाइज हम लोग यहाँ नहीं होते। हमने कोई बहुत बड़ा पिछले जन्म में कार्य नहीं किया है, इस जन्म में हमारे माता पिता ने क्योंकि असल दयालु हैं उन्होंने थोड़े हम पर कृपा की, हमें भक्ति से लगाया, कम से देवी देवताओं के पास तो भेजा ही होगा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस संस्था हमारे पास है, कौन है श्री कृपा जी, कृपा है, शास्त्र है, यहाँ पर छोटे बच्चों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर अपने बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो वास्तव में वर्ण संकर के समान जीवन बिताएंगे, मेरे वो क्या पिंडदान करेंगे, वो क्या भक्ति करेंगे। अगर सोचिए आप अपने भक्त को, अपने बेटे को भक्त बनाते हैं तो किसका फायदा है, अपना खुद का फायदा है। वर्ण भगवान के अगर भक्त बन जाता है परिवार में तो सारी ऊपर की नीचे सारी पीढ़ियाँ 50-100 पीढ़ियाँ पूरी कर जाएंगे। तो हम अपने पुरखों के पितरों का भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर हम अपने बेटे को बना देते हैं, तो अपने बच्चों को बना देते हैं। तो इस प्रकार का प्रयास कीजिए। और इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, देखिए सारे कर्तव्य बताया गया है, सारे कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण से हम लोग शरण ग्रहण करता है, यानी कृष्ण क्या इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है सिंसियरली, तो देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य से ऋण से मुक्त हो जाता है। कई प्रकार के ऋण हैं, ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण, आना पितरों का ऋण, ये ऋण हम किस किस को चुकाएंगे, कैसे कैसे चुकाएंगे, बहुत मुश्किल हमारे लिए। लेकिन अगर मात्र हम भक्ति करते हैं तो अलग से कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है, चतुर महाप्रभु बोलते हैं एक नदी सारे वस्तु सारे प्रकार के कार्यों का कार्य पूरा कर देती है, जो कि 10 कुएं करने वाले हैं, एक कुएं से पानी भरना है, एक कुएं से मवेशियों को नहलाना है, एक कुएं से खेती को सींचना है, ये सारे कार्य एक नदी पूरा कर देती है। ठीक बात है, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है, उसी में मवेशी नहाते हैं, उसी से पानी भी भरते हैं, उसी से सिंचाई भी होती है, उसी सारे कार्य होते हैं। वैसे ही सिर्फ मात्र भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है, अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, अलग से तर्पण करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, अलग से करवा चौथ रखने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए व्रत रखिए। जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, रामनवमी आता है, एकादशी का व्रत रखिए, भगवान इतनी कृपा करेंगे जो कि एक करवा चौथ का व्रत हो या एक मंगलवार का व्रत हो, शनि व्रत हो, ऐसे व्रत तुच्छ है, नगण्य है, और वो खरबो ऐसे व्रत के बराबर भी नहीं होते एकादशी के व्रत के होते थे। एकादशी व्रत ऐसा महत्व इतना महान है, ठीक है। तो ये हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जितने भक्त हैं ये अपने अपने जीवन में प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ दें, क्योंकि यहाँ जो शिक्षाएँ बताई जा रही है युद्ध करने से ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो कोई भी कैसा भी कुछ जीवन में कैसे भी प्रलय आए, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कृष्ण कॉन्शियस होगी, ठीक है। तो आगे आगे के श्लोक का बस बता अनुवाद पढ़ लेता हूँ क्योंकि अध्याय समाप्त कर रहा है। आगे बोलते हैं कि कुल परंपरा विनष्ट हो जाने से अवाचीन संतानों को जन्म देते हैं और दुष्कर्मों के समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण में विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजा पालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगत में पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, यानी युद्ध करना चाह रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। मैं अपने संबंधियों क्यों मारूं? और अंतिम में बोलते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। शांति में संजय बोल रहे हैं, संजय ने कहा, युद्ध में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष बाण और एक को रख दिया और शोक संतप्त से रथ के आसन में बैठ गए। इस प्रकार भगवद गीता के अंतिम प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध समय सैन्य जिस संख्या भक्ति वेदांत प्राप्त पर पूर्ण हुआ। तो आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे आगे दूसरे अध्याय का, अगर मोहन रोटो जी आएंगे तो आगे बताएंगे किस प्रकार उन्हें युद्ध करना का जो विचार था त्याग दिया और कृष्ण से आगे चर्चा कैसे हुई। हरे कृष्ण। तो आप लोग किसी अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो यहीं बात करेंगे। आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर घर का परिस्थिति ऐसे घर की है, घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विष्णु को भोग लगाकर, कृष्ण को भोग लगाकर पितर तर्पण करें, वैसे आवश्यकता नहीं है। एक दिन पहले करने से फर्क नहीं पड़ता, और भगवान को तो भोग लगाना ही है अन्न का। इनका प्रश्न है एकादशी के दिन एक श्राद्ध पड़ जाता है तो भगवान को तो अन्न भोग लगाइए, हाँ, और एकादशी के प्रसाद भी लगाइए और घर में बांटिए, ब्राह्मणों को खिलाइए, तो खिला सकते हैं। तीनों अच्छा ठीक है। अरे हाँ सबको रहने देखिए, भगवान का दर्शन अगर डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर भगवान हो उपस्थित हैं युद्ध स्थल में उसका तो लाभ होगा ही होगा। जब भगवान विग्रह के रूप में यहाँ उपस्थित तो उसका लाभ हो जाता है। मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ सब भक्त जितने भक्त बैठे हैं उनका लाभ तो हो रहा है भगवान की उपस्थिति का, तो वो लाभ हो रहा था। और वहाँ बताया जाता है कि जितने भी युद्ध में मारे गए सेना थे सारे के सारे वैकुंठ में निवास कर रहे थे, मृत्यु के बाद सबको मुक्ति प्राप्त हुई थी, तो युद्ध स्थल में तो सबको प्राप्त हो गया था, इसलिए उनकी चिंता नहीं कर रहे थे। अर्जुन को तो पता था क्या होने वाला है। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की श्रीमद भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे।